صلي على رسولك. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم خواتين وخوات. لاسٹ سنڈے ان صاحب کے کچھ سوالات تھے جو رہ گئے تھے باقی. یعنی صاحب نے پوچھا ہے کہ سیم ٹو سیم تھنگس واز سیڈ بائی بابا فرید گن شکر ٹو گرو نانک وین گرو نانک ٹاک ٹو بابا فرید آن ہز گریو اینڈ سو ہم ان بیئن. بابا فرید سیڈ دیٹ that feed the hungry, for that is how man will get closest to God. بات یہ ہے کہ جس طرح سے ہم سائنس پڑھتے ہیں اس میں اصول قائم رہتے ہیں, لا آف موشن ہو یا گریویٹی کو پڑھیں, اصول وہی رہتے ہیں, لیکن ہر استاد کا پڑھانے کا طریقہ, اس کے الفاظ مختلف ہو جائیں گے, مفہوم وہی رہتا ہے. تو اسی طرح روحانیت میں الفاظ مین ٹو مین ویری کر جائیں گے, الفاظ کی ترتیب بدل سکتی ہے, لیکن جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ایک ہی ہیں, وہی رہتی ہیں چاہے وہ کوئی بھی کہے. تو رب تعالیٰ کو جیسے میں نے لاسٹ سنڈے بھی عرض کیا تھا کہ تین چیزیں بہت عزیز ہیں, ایک بھوکے کو کھانا کھلانا, غلام کو آزاد کرنا, اور مقروض کا قرض ادا کرنا. اب ان تینوں چیزوں کو بیان کوئی کسی طرح سے بھی کر لے, لیکن بنیادی طور پر تو یہی رہیں گی. تو بابا صاحب نے بھی اگر بابا گرو نانک سے یہ کہا تو اس میں کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے, اس لیے کہ یہ تین چیزیں ترتیب اس کی بتاتے وقت بدل دے, لیکن رہیں گی یہی تینوں چیزیں. جو بھوکے کو کھانا کھلانا ہے, رب کے قریب جانے کا ذریعہ تو بہت بڑا ہے یہ, لیکن چونکہ ہم somehow or the other materialistic ویو لینے لگے ہیں ہر چیز کا, اور کسی بھی چیز کو کرنے سے پہلے ہم اس طرح سے تولتے ہیں کہ کام کرنے سے ہمیں دنیاوی فوائد کیا حاصل ہوں گے, جب ہم بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو اس سے ہمارا رسک بڑھتا ہے, رسک میں وسعت پیدا ہو جاتی ہے, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے. ویسے تو رب تعالیٰ نے ساری ہی چیزوں کے بارے میں یہ فرما دیا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ, تمہارے کام میں خود کر دوں گا. تو نہ صرف بھوکے کو کھانا کھلانے بلکہ کسی بھی شخص کے کام آیا جائے, بغیر کسی لالچ کے, غرض کے, بغیر کسی ریٹرن کی توقع رکھے ہوئے, تو اس کا ایک لازمی نتیجہ ہی نکلتا ہے کہ انسان کے کام از خود ہونے لگتے ہیں, رب تعالیٰ اسباب بنا دیتا ہے کہ آدمی کے کام خود ہونے لگتے ہیں. یہ इन्होंने आगे इसी सिलसिले में कहा कि सरप्राइजिंगली दास अगेन बैक टू लाहौर आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ हिज डेथ टिल नाउ पीपल आर कमिंग टू हिज मजार एंड देयर हंगर इज इल्यूमिनेटेड देयर मेनी सूफीज इन पास्ट इन प्रेजेंट आर डूइंग दिस सरप्राइजिंगली सिक्स आर ऑल्सो डूइंग दिस नो वन गोज हंग्री फ्रॉम गुरुद्वारा whether they be a Sikh or not. Now if all religions are true, as said by Sufis, and as can be seen, there is spirituality in all of them, then why does Quran and Hadith deny that? थोड़े से हमारे समझने में कहीं हमसे कोताही हो जाती है. कुरान और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान के बारे में भी ये है, रब ताला ही का फरमान है कि ये किताब अपने से पहले आने वाली किताबों की तस्दीक करने वाली है, डिनाई नहीं करती, ये तस्दीक करती है. इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में फरमाया कि मैं अपने से पहले आने वाले पैगंबरों की तस्दीक करने वाला हूं. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तस्दीक करते हैं, डिनाई नहीं करते पहले पैगंबरों को. इसी तरह कुरान पहले नाजिल होने वाली किताबों की तस्दीक करता है, उसको डिनाई नहीं करता. ये हम नहीं समझ पाते. हमारे अंदर एक चीज गलत तौर पर पैदा हो गई कि हम अपने अलावा किसी को सही मानने को तैयार नहीं है. शायद यही जज्बा है जिसकी वजह से हमें कुरान के बारे में ये गलत फहमी हो रही है कि वो डिनाई कर रहा है, तस्दीक करता है. किसी साहब ने पूछा कि रूहानी दुनिया में जब किसी जिंदा वली अल्लाह को शहीद के टाइटल से नवाजा जाता है तो इससे क्या मुराद है, शहीद कौन सा मकाम है. एक जमाने में यहां जब बयान किया जा रहा था रूहानियत के दर्जात और मकामात, तो मैंने अर्ज की थी कि शहीद में सबसे ऊपर का मकाम है जहाँ तक कोई आम आदमी जा सकता है. उसके बाद तो फिर मकाम ऐसे हैं जहाँ कोई वली नहीं पहुँचता. तो ये शहीद जिस तरह से अब्दुल्ला शाह गाजी शहीद, उनका मकाम शहीद का है. ये मकामात में सबसे बुलंद तरीन मकाम है ये. कुछ और लोग भी हैं जिनको ये टाइटल मिला शहीद का, वो उस मकाम को जा पहुंचे. किसी साहब ने मेरी बारे में कुछ सवाल पूछ लिया, जबकि मैं इसको हमेशा अवॉइड करता हूँ अपनी ज़ात के बारे में बात करते हुए. जब लेट 90s में आप इंतहाई क्राइसिस में यूके गए थे, तो क्या ये आपकी ज़िंदगी का सबसे कठिन दौर था, या वो दौर ज़्यादा मुश्किल था जब आप बड़े शाह साहब के पास भी पैदल जाने लगे थे? तब क्या सोच और ख्याल था जो आपको मायूस होने से बचाता था, मतवक्कल और उम्मीद रखता था, और किसी लम्हे भी अल्लाह पर आपके भरोसे और यकीन को मुतजलजल नहीं होने देता था? अगर मुनासिब समझें तो हमारी तालीम के बारे के लिए इस बारे कुछ इरशाद कर दें. जब मैं शाह साहब के पास जा रहा था, वो दौर ज्यादा मुश्किल का दौर था। वो असल में उस वक्त, ये तो बाद में बातें समझ आई, उस वक्त समझ नहीं आती थी कि वो मेल में से गुजारा जा रहा था मैं, जिसको कहते हैं कि पट्टी चक्की के दो पार्टों में पीसा जा रहा था मैं, कि वो हड्डियों का सुरमा बन गया। और जब वो ट्रेनिंग हो चुकी तो फिर जो कुछ उसके इनामात मिले वो वाकईतन इनामात ही थे। जब चक्की के दो पार्टों में पिस रहा था तो उस वक्त तो ये एहसास नहीं हुआ कि ट्रेनिंग हो रही है, पता ही नहीं चलता था कि वो इस तरह से सुबह से रात तक मुसीबतों और झटकों और जोल्ट्स में से गुजार रहा था अल्लाह, कि होश आती ही नहीं थी। तो समझ में नहीं आता था कि जिंदगी है क्या और किधर को जाऊंगा मैं अब। लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता पता चलना शुरू हुआ कि नहीं, वो असल में ट्रेनिंग थी, अगर उसमें से मैं ना गुजारा जाता तो ये इनामात कभी आते ही नहीं मुझ तक। तो वो दौर ज्यादा सख्त था, लेकिन लेट 90s में तो दौर सख्त जरूर आया, लेकिन उस वक्त तक शायद मैं थोड़ा ट्रेन हो गया था या हौसला ज्यादा हो गया था। तो उस वक्त फिर कोई अंदाजा नहीं हुआ कि क्या है, ठीक है जो हो रहा होने दो। तो अल्लाह ताला ने उससे भी गुजार दिया और निकल आए। लेकिन वो दौर वाकईतन ऐसा था कि जिसमें से जिंदा गुजरना वाकई इंसान का मुश्किल होता है। इनका अगला सवाल ये है कि क्या वजह है कि चक्की के दो पार्टों में पिसने वाला इंसान कभी कभी इनकबाज की कैफियत का शिकार हो जाता है, इस कैफियत से कैसे बचा जाए। कुछ चीजें इंसानी फितरत का हिस्सा है, इंसान फितरत नहीं बदल सकता। तो अप्स एंड डाउन्स इंसानी फितरत में ही है, उससे वास्ता पड़ता है इंसान का। और ये इनकबाज की जो कैफियत पैदा होती है, ये भी मेरे ख्याल बहुत जरूरी है इंसान के लिए। आपने नहर में बहता हुआ पानी देखा होगा, मैदानी इलाकों में नहर में दो चार छह मील के फासले के बाद दीवार खड़ी करके पानी के आगे रुकावट पैदा की गई होती है। वो इसलिए होती है कि पानी का फ्लो कायम रहे, अगर उसमें रुकावट नहीं खड़ी की जाएगी तो पानी स्लो डाउन होता होता एक जगह साकिन हो जाएगा, पानी का फ्लो नहीं पैदा होगा। तो इसी तरह इल्म के अंदर अगर इनकबास की सूरत पैदा ना हो तो फिर इंसान के अंदर दो चार गलत चीजें पैदा हो जाने का इम्कान होता है, जिसमें सबसे बड़ी बात तो यह है कि इंसान तकब्बुर का शिकार होने लगता है। इंसान दुआ कर रहा है, दुआ रब ताला अपनी रहमत के सदके है उसकी हर दुआ कबूल करता है। जिनको अमर हासिल होता है वो दुआ भी नहीं करते, जुबान से कह देते हैं कि अच्छा जाओ ये काम हो जाएगा, रब ताला अपनी रहमत के सदके इज्जत कायम रखता है, काम हो जाता है। जब ये सब होने लगता है तो शुरू में तो इंसान इसे रूटीन समझने लगता है, इंसान की जहन से ये बात निकल जाती कि कुलियतन रब की रहमत है कि मेरे कही हुई बात पूरी हो जाती है। तो उसे वो फॉर ग्रांटेड लेता है, ठीक है मैंने कह दिया हो जाएगा। बहुत खतरनाक चीज है। जब ये सिलसिला देर तक जारी रहता है तो तकबुर आता है। तो रब ताला जिसको अजीज रखता है, दोस्त रखता है, उसको इस इनकदास के जरिए से झटका दे देता है और ऐसी कैफियत भी पैदा हो जाती है कि तीन दिन का वक्त ऐसा आ जाएगा, पांच दिन का आ जाएगा, सात दिन का, अभी तक जो एक्सपीरियंस किया वो मैक्सिमम सेवन डेज। तो ऐसी कैफियत आती कि जो कहा जुबान से बिल्कुल उसके उलट हो गया काम। जो दुआ की बिल्कुल उलट हो गया मामला। उससे आदमी को झटके लगते हैं, इंसान के पांव जमीन पे आ जाते हैं। तो यूं उसमें तकबर पैदा नहीं होता, वरना तकबर अगर एक बार पैदा हो गया तो गया सब कुछ, फिर खो देगा। तो अल्लाह ताला बचाता है, वो भी उसकी मेहरबानी है, इंसान के कंधा हिला देता पकड़ के। तो ये एक तरह से रहमत भी है। इनका अगला सवाल है कि कभी कभी हमारी हर तदबीर और कोशिश सांप की सीढ़ी का खेल क्यों बन जाती है? जो ही बड़ी कोशिश के बाद 99 पर पहुंचते हैं तो अचानक किसी वजह से जीरो पर आ जाते हैं। क्या अल्लाह हमें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा होता है, या ऐसे में तदबीर तर्क करके खुद को हालात के बहाव पर छोड़ देना चाहिए? ये जो लैडर एंड स्नेक वाली गेम है कि 99 पर पहुंचे तो सांप के मुंह में आ गए, फिर वापस जीरो पर चले गए, इसके लिए अंग्रेजी में एक अच्छा लफ्ज है कि ब्लेसिंग इन डिसगाइज। बहुत बड़ी रहमत है। इंसान को जमीन पर रखने के लिए, उसको अपने ठिकाने पर रखने के लिए बड़ी जरूरी है, वरना इंसान तो खुद को माज़ल्लाह खुदा समझने लगे। तो रब दिखाता रहता है कि रब मैं हूं, ये मैं हूं जो काज़े मुतलक है, और ये मैं हूं जिसके कब्जे में, जिसकी कुदरत में ये सब चीजें हैं। तुम तो सिर्फ मेरी रहमत और मेरी मेहरबानी की वजह से जो कुछ भी हो वो हो। तो ये एहसास इंसान को दिलाना बड़ा जरूरी है। तो जहां हमारी हर तदबीर कामयाब हो रही है, कामयाब होती रहती है, हम जो चाहते हैं करते रहते हैं, तो अचानक नाकामी का सामना ना करना पड़े तो इंसान में तो तकब्बुर बेपना हो जाए। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। तो ऐसी चीजों पर तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि रब ताला हमें ठिकाने से रखे हुए हैं। और इसका दूसरा पहलू आपने खुद बयान कर दिया कि क्योंकि हमारी अक्ल भी नाकिस है, इल्म भी महदूद है, वीन हमारी बड़ी कोताबीन लोग हैं, तो बहुत सी चीज़ों को जिनको हम अपनी उस नाकिस अक्ल और महदूद इल्म की वजह से बहुत अपने लिए फ़ायदेमंद समझ रहे होते हैं, दर हकीकत वो हमारे फ़ायदे में नहीं होती है। इन द लॉन्ग रन उससे हमें नुकसान होना होता है। तो रब ताला मेहरबान है, इंसान को नुकसान से बचाता रहता है। तो रब बचा लेता है, लेकिन हम उसको फौरी तौर पर ये समझते हैं कि तो गलत हो गया। बाद में पता लगता है कि नहीं, अल्लाह ने हमें बचा लिया था। तो जहां हमें नाकामी आती है उसको बड़े स्माइलिंग फेस से कबूल कर लेना चाहिए, उसका नतीजा बेहतर ही होता है। इन्होंने अगला सवाल पूछा है कि क्या सिलसिला चिश्तिया साबरिया वारसिया में हर खलीफा को मुर्शिद की जिंदगी में मोहर वलायत लग जाती है, और क्या खलीफा को उसका इल्म भी फौरन हो जाता है। देखिए दो चीजें हैं, दो मुख्तलिफ चीजें हैं। एक है वलायत, दूसरी चीज है इल्म। मुर्शिद वलायत नहीं दे सकता, और रब ताला ही देगा, लेकिन मुर्शिद आपको इल्म अता कर सकता है। दोनों काम कर लेता है मुर्शिद, इल्म अता भी कर देगा आपको, इल्म सिखा भी देगा। तो जो इल्म कोई शागिर्द कमाता है वो इल्म देरपा भी है और सुपीरियर भी है। जो उसको अता होता है इल्म देरपा नहीं होता है। अता किया हुआ इल्म जो है उसकी मिसाल वैसी ही है जैसी आजकल हम सब ड्राइविंग करते हैं। हमें न गाड़ी के इंजन के फंक्शन का पता है कि ये इंजन कैसे काम कर रहा है, ना हमें ये पता होता है कि इंजन का कौन सा पुर्जा क्या फंक्शन पूरा कर रहा है, ना हमें ये मालूम होता है कि अगर इंजन में कोई नुक्स आ गया तो उसको हम दूर कैसे करेंगे। बसा औकात तो ड्राइवर को गाड़ी के अंदर जो कंट्रोल्स हैं उन कंट्रोल्स का भी पूरी तरह पता नहीं होता। लेकिन जो ड्राइवर प्रॉपरली ट्रेन्ड है उनको लाइसेंस देने से पहले थ्योरी का टेस्ट भी होता है, टेक्निकल टेस्ट भी होता है, और ड्राइविंग का प्रैक्टिकल टेस्ट भी होता है, फिर कहीं जाके वो पास करते हैं और उनको लाइसेंस मिलता है। ऐसे ड्राइवर बहुत अच्छे ड्राइवर होते हैं, उनके हाथों एक्सीडेंट्स कम होते हैं। तो जब आप अपने मुर्शिद से इल्म सीखते हैं दो प्रोसेस बैक वक्त चलते हैं मुर्शिद के यहां। एक मुर्शिद से आप इल्म सीख रहे होते हैं या वो सिखा रहे होते हैं, जो भी कहना चाहें आप। दूसरा वो आपकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो जब आपके मुर्शिद साहब ये समझ लें कि ये आदमी परफेक्ट हो गया, इसको जितना इल्म मुझसे मिल जाना चाहिए था इसने सीख लिया, उसे हासिल कर लिया और इसकी तरबियत हो गई, तो आपको खिलाफत दे देंगे। यहां तक आपके मुर्शिद का हाथ है, लेकिन वो जो लाइसेंस है जिसमें आपने थ्योरी का टेस्ट, आपने टेक्निकल टेस्ट, आपने प्रैक्टिकल ड्राइविंग टेस्ट वो पास करके लाइसेंस जो मिलेगा वो वलायत की मोहर है, वो रब ताला से मिलता है। रिकमेंडेशन किस किस की होती है ये मैं यहां एक से ज्यादा मरतबा अर्ज कर चुका। फाइनल अप्रूवल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होती है, तो उसके बाद मोहर लगा दी जाती है। तो मोहर लगाना मुर्शिद का काम नहीं है, उसका काम इतना है कि आपको इम्तहान के लिए तैयार कर दे। इम्तहान आपका लाहौर बोर्ड ने लेना है और पास होने की सनद आपको वहां से मिलनी है, वो स्कूल टीचर ने नहीं देनी आपको। तो मुर्शिद आपको तैयार कर देगा, वलायत की मोहर जो है वो। तो इसलिए ये जरूरी नहीं है कि वलायत की मोहर मुर्शिद की जिंदगी में लग जाए। ये और बात है कि बाज़ औक़ात मुर्शिद के पास इंसान जब जाता है तो पहले से काफी कुछ रास्ता तय कर गया होता है जिसको उसको खुद नहीं पता होता। अगर एक शख्स में बचपन में ही उसके माँ बाप की तरबियत ने या माहौल ने या हालात ने उसके अंदर ये चीजें पैदा कर दी कि वो दूसरों के लिए कुर्बानी करता है, इवन एट द एज ऑफ 5 साल का है, तो अपने साथियों के लिए वो बड़ा मेहरबान है, अपने साथियों के लिए कुर्बानी कर रहा है, अपने आप को डिफेंड नहीं करता है कि अगर किसी ने झूठा इल्जाम लगा दिया तो खामोश बैठ गया। तो वो बचपन से उसके अंदर ये वर्चुअस पैदा होते हैं और उसके असरात उसकी रूह पर मरतब हुए होते हैं और उसकी रूह दिन ब दिन लतीफ होती चली जाती है उसकी हरकतों की वजह से। इबादत गुजार हो गया इसके साथ साथ वो बचपन से ही। असलाफ के बारे में उसने पढ़ा तो इश्क में मुब्तला हो गया उस बचपन में छोटी उम्र में, और लाशौरी तौर पर कॉपी करने लगा उनको जिनको आइडियलाइज कर रहा है वो। तो ये बच्चा जब बाहिस्तस्ता बड़ा होता है और उसकी अपनी हरकतों पर कायम रहता है तो रूहानी तौर पर वो पहले से ही काफी बुलंदी पर गया हुआ होता है। इल्म नहीं होता, रूहानी इल्म उसके पास नहीं होता, लेकिन रूह उसकी लतीफ होती है। तो इस कैफियत में जब वो अपने मुर्शिद के पास पहुंचता है तो मुर्शिद का सारा काम पहले से ही हुआ हुआ है। वो अब सिर्फ मुर्शिद ने ये करना है कि उसकी उन आदात को चैनलाइज उसने कर देना है और रूहानी इल्म सिखा देना है। मोहर बाज़ का एक साल में भी लग जाती, 6 महीने में लग जाएगी, 2 साल में लग जाएगी, 2.5 साल में लग जाएगी, डिपेंड करता है कि कैसा है इंसान। तो वो ये जरूरी नहीं कि मुर्शिद की जिंदगी में मोहर लग जाए। तो अगर इस तरह तैयार पहले से मिल गया मुर्शिद को कोई जिसकी तरबियत कुदरती तौर पे हुई भी है, उसकी फितरत में है ये चीजें, तो बड़ी जल्दी मोहर लग जाएगी। बस इनका अगला सवाल है कि आपने कहा था कि कुछ औराद और वज़ाइफ में नागा जीरो पर ले जाता है, लेकिन अगर इंतहाई मजबूरी की वजह से नागा आ जाए तो क्या कोई कॉम्पनसेशन है, 24 घंटे के अंदर अंदर वो पढ़ाई पढ़ ली जाए। देखिए दो चीजें हैं, आपने अपने सवाल में दो मुख्तलिफ चीजों की बात कर दी। नागा हो जाए और दूसरी बात ये लेट पढ़ लिया जाए। नागे की तो कोई कॉम्पनसेशन है नहीं, वो तो फिर आप जीरो पे गए, वो नहीं रुकता काम। नाका करने से बेहतर यह है कि लेट पढ़ लिया जाए। ये जो हम कहते हैं कि फकीर लोग दुनिया को छोड़कर जंगल में जा बैठा, पहाड़ पर चढ़ गया, उसके अंदर दो तीन चीजें, दो तीन फैक्टर्स काम कर रहे हैं। अगर हम दुनिया में रहते हैं, दुनियावी जिंदगी सुन्नत के ऐन मुताबिक भरपूर तरीके से गुजारते हैं, आपकी अपनी फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, दोस्त अहबाब हैं, सोशल सर्कल है, रोजगार के मामलात हैं, इसमें रहते हुए आप रब ताला की तरफ रजू रखते हैं, इसीलिए इसका दर्जा, इसका मकाम बहुत बुलंद है कि इसमें मशक्कत बहुत है, कहीं न कहीं कुछ न कुछ सामने आता रहता है इंसान के, कहीं औलाद मजबूरी बन रही होती है, इंसान असूलों को छोड़ रहा होता है, कहीं इंसाफ करने की सलाहियत का टेस्ट आ जाता है कि मामला है दुश्मन के बच्चे और अपनी औलाद के दरमियान आ गया। अब ये टेस्ट है बहुत बड़ा कि वहां इंसान असूलों को अजीज रखता है कि औलाद की मोहब्बत की वजह से उन असूलों से हट जाता है। इबादत, ऐन इबादत के वक्त दोस्त अहबाब आ जाएंगे, कोई दुनियावी जरूरत आ जाएगी, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आएगी, तो इंसान मुश्किल में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं, किधर जाऊं। अब उसको हैंडल करना, इसलिए उसका अजर ज्यादा है, उसका इनाम ज्यादा है, लेकिन अक्सर लोग इस मुश्किल रास्ते को अपनाने के बजाय आसान रास्ता लेते हैं कि दुनिया से एक तरफ होके चले जाते हैं, एक तरफ बैठ जाते हैं, वहां कोई उनके लिए मुश्किल नहीं है कि राइट ऑन डॉट वो इबादत कर लेंगे, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। लेकिन उसके इनामात उतने बड़े नहीं हैं। असल बात यह है कि सुन्नत को फॉलो किया जाए और भरपूर दुनियावी जिंदगी भी गुजारी जाए और रूहानियत की तरफ भी रहा जाए। हम तो इतने कमजोर लोग हैं कि अगर मेरी वाइफ मुझे ये कह दे कि तुम्हारी अकल में नहीं बात आती, यू स्टूपिड, तो बस उसमें मेरी अना हर्ट हो गई और मैं एक तूफान उठा दूंगा और हर एक से कहूंगा कि देखिए मेरी वाइफ ये मुझे स्टूपिड कहती है। दरहकीकत उसको ये समझ लेना चाहिए कि टेस्ट आया मेरा, जब ज्यादतियां होती हैं तो उसको इंसान टेस्ट समझ ले और उन ज्यादतियों को खुशदिली से बर्दाश्त कर जाए, तो फिर ये दौर खत्म हो जाता है जिसमें टेस्ट आते हैं, फिर आसानी के दौर इंसान का शुरू हो जाता है। दुनिया में रहते हुए इस राह पे चलना बड़ा दुश्वार काम है, लेकिन इनामात उसके बहुत हैं। इनका एक सवाल है अगला कि क्या मुर्शिद को अपने तमाम शागिर्दों की रूह का कोड मालूम होता है? क्या वजह है कि शागिर्द ने जो पढ़ाई अपनी फरमाइश पर ली होती है वो उसे एक तवील अरसे तक कंटिन्यू नहीं कर पाता? तो आपने कहा था कि मुर्शिद जो पढ़ाई खुद से किसी मुरीद या शागिर्द को देते हैं वही असल पढ़ाई होती है। सवाल यह है कि शागिर्द अगर मेरे जैसा नालायक और कमजोर हाफ़िज़े का मालिक हो और उसे अपनी पहली पढ़ाई के बारे में कंफर्म ही ना हो कि वो क्या करे, तो क्या वो मुर्शिद साहब की खिदमत में अर्ज कर दे या मुर्शिद साहब खुद ही इस बारे में किसी रोज़ इरशाद फरमा देंगे? ये रूह की कोड का तो मुझे भी नहीं पता कि आपसे आप इससे क्या आपकी मुराद क्या है इससे, लेकिन ये ज़रूर मैं जानता हूँ कि मुर्शद अपने हर शागिर्द की गहराई को जानता है कि ये कितने पानी में है, वो उसको इवेल्युएट कर लेता है। इसीलिए जो मुर्शद सलूक करता है अपने शागिर्द के साथ, मैं इल्म के एंगल से कह रहा हूं, वही असल सलूक होता है, वही वो सलूक है जो होना चाहिए उसके साथ। जो इस राह के सही राही हैं वो मुर्शिद से कभी कुछ कहते ही नहीं है, वो ईमान की हद तक यकीन रखते हैं कि हमारे मुर्शिद बेहतर जानते हैं कि उन्होंने कब हमें क्या देना है, कितना देना है, कैसे देना है, वो तो पूछते ही नहीं है। चले गए, मिल लिए मुर्शिद साहब से, सलाम किया, चले गए। कभी आजमाइए एक चीज, ये भी है कि आपके मुर्शिद साहब हैं, आप उनके पास जाते हैं, वो यकीन जब मुर्शिद हैं तो फिर यकीनी तौर पर कोई मर्द कामिल हैं, साहिब इल्म हैं, होंगे, डेफिनेटली होंगे। आप रोज जाके उनसे जब भी मिलें एक आध दुआ कराइए और नोट करते रहिए। आपको एक हैरत होगी कि ये तमा आप में बढ़ती चली जाएगी या जरूरत बढ़ती चली जाएगी कि दुआ कराएं, आप मसले हल नहीं होंगे। आप अपने मुर्शिद साहब से दुआ मत कराइए, सिर्फ जाके मिलिए और नोट करते रहिए कि किस तारीख को किस काम से गए थे, वो कितने दिन के बाद हो गया काम। आपको हैरत होगी कि आपके 80-90% काम खुद ब खुद होते चले जाएंगे, जरूरत नहीं पेश आएगी दुआ की, आपको दुआ करवाने की पेश, दुआ की तो जरूरत पे आती है, तो होती रहती है, दुआ करवाने की जरूरत पेश नहीं आएगी, अज खुद हो जाएंगे वो काम। और आज एक नुक्ते की बात बताने लगा हूं, अपने मुर्शिद साहब के मिलने से पहले दिल में अगर ये कह दें कि मेरा ये काम है हो नहीं रहा, मुर्शिद साहब जरा इसको देख लीजिए, जुबान पर ना लाइए, दिल में कहिए बस, और मिल के आ जाइए और देखिए कितनी जल्दी काम होता है आपका, आजमाइए आप, लम्हों में होते हैं काम। ये आपके मुर्शिद का रूहानी तसर्रुफ है। लेकिन हमारे अंदर जो बैठा हुआ नफ्स है उसकी तसल्ली नहीं होती है जब तक कि हम दुआ के लिए कह ना दें, हालांकि अपना नुकसान कर रहे हैं कह के कि काम लटकते जाते हैं। तो इसी तरह पढ़ाई का मुर्शिद से कभी मत कहिए, कभी मत मांगिए। मुर्शिद से सब कुछ हासिल करने का आसान तरीका कुछ न मांगना है, बस मुर्शिद की खिदमत में हाजिर होइए, मुर्शिद साहब की खिदमत कीजिए, जो करना चाहते हैं कर सकते हैं। वो खिदमत से मुराद मेरी वो दूसरी खिदमत नहीं कि नजराना पेश करें, मैं वो नहीं कह रहा आपसे। आप देखिए आपके काम अज खुद होने लगेंगे, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको कुछ कहने की कभी। ये उसके जिन साहब को आपने मुर्शिद तस्लीम किया है, ये उनके रूहानी तसर्रुफात हैं सारे, बाकी इनके सवालात के जवाब इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे बशर्ते जिंदगी देंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अस्सलामु अलैकुम।